लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
प्राकृतिक सौंदर्य से सजी अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित इस मधुबन पावन भूमि पर डबल लाइट योग साधना भट्टी में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सभी मम्मा बाबा आदि रत्नों और योगियों की महान कर्म भूमि पर तपस्या करने आए हो। यह आपका परम सौभाग्य है। तो ऐसी पावन भूमि पर शिव बाबा, मम्मा बाबा, हमारी सभी पूर्वज दादियों दादाओं के साथ साथ आदरणीय शशि दीदी जी, सिलू दीदी जी और समस्त मधुबन निवासियों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सर्वप्रथम इस योग तपस्या पट्टी के उद्घाटन में बाप दादा की अनन्य रत्न, मधुबन का श्रृंगार और सारे ब्राह्मण परिवार की अति प्रिय आदरणीय शिलू दीदी जी पधारी है, जिनका हम एक हाथ की ताली से अभिवादन करते हैं। आदरणीय दीदी जी के सरल सौम्य व्यक्तित्व से ब्राह्मण परिवार के सभी भाई बहन परिचित है ही, लेकिन यदि कोई नए भाई बहन सभा में हो तो दीदी का सक्षम परिचय आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में ही अपने जन्म स्थान मुंबई में आपको परमात्मा प्राप्ति का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद मम्मा बाबा और दादियों की दिव्य पालना में पलते हुए लौकिक और अलौकिक पढ़ाई का सुंदर बैलेंस रखते हुए मुंबई विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1969 में आपने अपना समग्र जीवन 21 वर्ष की आयु में मानवता और प्रभु सेवा के लिए समर्पित कर दिया। इसके बाद कुछ वर्ष मुंबई, हैदराबाद, काठमांडू में सेवाओं के अतिरिक्त 1974 से 1976 तक मॉरिशियस और कुछ अफ्रीकी देशों में अपनी सेवाओं द्वारा परमात्मा संदेश का परमचन लहराने के बाद 1976 से आप स्थायी रूप से बेहद मधुबन घर में ही अपनी बेहद की सेवाएं दे रहे हो। आपकी माणी में स्वर कोकिला सी मिठास और माँ सरस्वती की ज्ञान वीणा की झंकार है। बाप दादा ने आपको सर्व पापों को हरने वाली, हरि का द्वार दिखाने वाली हर की पौड़ी कहकर आपकी महिमा की है। आप वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षिका के रूप में वर्षों से मधुबन में होने वाले राज्योग शिविर एवं भट्टियों का सुंदर रीति से संचालन कर रहे हैं। आप ही वह महान आत्मा है जो पहले पहले बाबा की टेलीविजन की सेवाओं के माध्यम से ईश्वरीय सेवा के निमित्त बने और जी टीवी, सोनी टीवी चैनल पर आपके वक्तव्य प्रसारित हुए। इसके अतिरिक्त आज तक भी आपकी आवाज में रिकॉर्ड की गई अति लोकप्रिय राज्योग कमेंट्री सभी सेवा केंद्रों पर सुनाई जाती है, जिसे सुनकर भाई बहन गहन आत्म अनुभूति में खो जाते हैं। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कुशलता पूर्वक ईश्वरीय ज्ञान सुनाने के साथ साथ एक कुशल अनुवादक भी है। बाप दादा मिलन के समय बाबा के महावाक्यों का बहुत सरल और सटीक इंग्लिश भाषा में अनुवाद करके सुनाने की सेवा भी आप करते आए हैं। आपकी ऐसी अनेक विशेषताओं के लिए स्वयं बाप दादा ने आपको उनके वरदानों से सुसज्जित किया है। आप अपनी इंग्लिश भाषा की योग्यता अनुसार बाप दादा ने आपको इस विशेषता के लिए मधुबन बेहद घर में डबल विदेशी भाई बहनों की सेवा के लिए चुन लिया। तो ऐसी महान तपस्विनी और विद्या की देवी हम सब के बीच में आज उपस्थित है, जिसके श्री मुख से आज हम इस डबल लाइट योग साधना तपस्या भट्टी के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में सुनेंगे और उससे सारी भट्टी के लिए सुंदर प्रेरणाएं और मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आदरणीय शिलू दीदी जी,
आप अपना परिचय भी दीजिए ना।
शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी अरुणा बहन, गुजरात बड़ौदा अटलात्रा से।
और कब से ज्ञान में, कब से सेंटर?
वैसे बचपन से ही ज्ञान मिला है, लेकिन 35 साल से इस ईश्वरीय सेवा में लगे हैं।
और हमारी साथी बनकर ये सारी भट्टी को कोऑर्डिनेट करेगी।
हमने ज्ञान वैसे देखो तो भले बचपन से माँ गुरु बनी है, लेकिन वैसे जीवन को सफल करने के पहले बड़े भाई को लेके आई थी शिविर कराने के लिए, तो पहली शिविर मेरे भाई के साथ दीदी जी की मैंने सुनी है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन तपोभूमि वरदान भूमि परिवर्तन भूमि, प्यारे बाप दादा दादियों की कर्म भूमि, तपस्या भूमि, जहाँ आप सभी भट्टी करने आए हो, खास करके धर्मशाला और मारकंडे, क्या शाहबाद मारकंडे से पधारे हो, तो आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत दूर दूर से आए हो, जो धर्मशाला से आए हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, नीचे जो शाहबाद मारकंडे से आए हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, जो पहली बार मधुबन में रहेंगे वो हाथ उठाएं। अच्छा, क्योंकि आजकल तो अधिकतर जो भी भाई बहने आते हैं शांतिवन में रहते हैं और यहाँ चार धाम की यात्रा करने आते हैं, तो आप तो बहुत बहुत भाग्यशाली, क्या पद्मा पदम भाग्यशाली हो, जो मधुबन तपस्या भूमि में आप भट्टी करने लिए पहुंचे हो। हो सकता है आप में से कुछ भाई बहनों का नाम पहले से होगा, लेकिन ऐन मौके पर उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया किसी कारणवश और वो नहीं आ सके, ऐसे होगा। और ऐसे भी कई भाई बहने होंगे जिनका नाम नहीं था लिस्ट में, लेकिन ऐन मौके पर उनका प्रोग्राम बन गया और वो पहुंच गए, वो भी होगा। तो मधुबन में आना ये भी एक बहुत भाग्य की निशानी है, और यहाँ रहना 5 दिन ये तो अहो भाग्य की निशानी है। और फिर उसमें भट्टी करना तो और ऊंचे भाग्य की निशानी है। बहुत लंबी लिस्ट है जहाँ जिन सेंटरों ने डिमांड की है हम पांडव भवन में भट्टी करें, लेकिन जिनको चांस मिल जाता है उनका तो भाग्य परम चोटी का है। बिल्कुल, तो आपने, आप जैसे ही यहाँ पधारे आपको अपना अकोमोडेशन मिला होगा और उसी समय आपको ये विजय माला पहनाई गई। सबने पहनी है विजय माला, किसकी नहीं भी है, पहन लो, क्योंकि ये पता चलेगा। टीचर्स बहनों को तो नहीं मिली है ना, टीचर्स बहनों को नहीं दी है, देते हैं उनको नहीं। टीचर्स बहने हाथ उठाएं। तो बाकी सबको तो विजय माला मिल गई होगी, और आपने जैसे ये विजय माला पहनी अवश्य अंदर में ये दृढ़ संकल्प किया होगा कि मैं बहुत दिल व जान सिक्त व प्रेम से ये भट्टी करूंगी या करूंगा, और सचमुच अपने जीवन में जो कमियां, कमजोरियां, त्रुटियां, खामियां, जो भी कहो, इन सब को खत्म करूंगा या करूंगी, इस भट्टी में स्वाहा करूंगी और एकदम बदल कर जाऊंगी। क्योंकि जब आप वापस जाएंगे तो हर एक आपको नोट करेगा कि ये कितना बदल कर आया है। अगर वैसे के वैसे ही गए तो कहेंगे कि भट्टी से आपने क्या लाभ लिया, क्योंकि भट्टी माना पकना, भट्टी माना तपना, भट्टी माना परिवर्तन होना, भट्टी माना सब जो भी कर्मों का हिसाब किताब है, जो भी व्यर्थ है वो सब खत्म होना। जैसे भट्टी में कोई भी चीज़ पड़ती है तो उसका परिवर्तन होता है, जैसी चीज़ उस अनुसार परिवर्तन। आप सोना डालो और बहुत तपाओ सोने को तो क्या होगा, वो सोना मेल्ट हो जाता है और जो सारी खाद है और धातु वो सब निकल जाते हैं और सोना शुद्ध हो जाता है। तो आप यहाँ वो शुद्ध सोना बनने के लिए आए हो, तो सारी जो भी और खाद है वो सब यहाँ निकाल देनी है। दूसरा, भट्टी में जो चीज़ पड़ती है वो अगर बहुत नरम चीज़ है तो वो बहुत मजबूत हो जाती है, गीली मिट्टी पड़ती है ईंट के रूप में तो वो कितनी स्ट्रांग मजबूत हो जाती है, जितनी बड़ी इमारत को खड़ा कर सकती है। ईंट की क्या विशेषता पर है तो वो मिट्टी, तो कितना उसमें परिवर्तन आ जाता है, इतनी ताकत आ जाती है क्योंकि भट्टी में पड़ी है। और कई ऐसी सब्जियां हैं जो थोड़ी कठोर होती है पर जैसे ही आग में डालते हैं, बैंगन, आलू, टमाटर, तो जैसे ही आग में डालते हैं तो क्या होता है, मुलायम हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, बाहर की वो चमड़ी भी निकल जाती है, मानो परिवर्तन होता है, बहुत ही सहज सरल हो जाते हैं, काटना भी सहज, उसका बर्था बनाना भी सहज, तो वो अंदर की नरमाइश आ जाती है। तो कठोर चीज़ नरम हो जाती है और जो मुलायम चीज़ है वो स्ट्रांग गट्ट हो जाती है। किचरा डालते हैं, आग जलाते हैं, सूखी सूखी घास को जलाते हैं तो वो कार्बन बन करके कैसे धुआं निकल जाता है और सफाई हो जाती है। कोयला डालते हैं, इतना काला काला कोयला होता है, वो आग में डालते हैं तो धीरे 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 वो राख बन जाता है, रंग बदल देता है। तो हर चीज़, चाहे वो कैसी भी चीज़ हो, अग्नि में पड़ते ही उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो ये भी योग तपस्या है। जिस योग तपस्या में आप तप कर, पहले तो डबल लाइट बनना है, इतना हल्का बन जाना है, फिर शुद्ध बन जाना है, और साथ में जो भी अंदर में खामियां हैं वो निकल जाती है। तो ऐसी भट्टी में आप आए हो, सुबह से लेकर के रात्रि तक इस भट्टी में पकना है। आपको बता दिया होगा क्या क्या नियम पालन करने हैं इस भट्टी में, और उन नियमों को अगर आप अच्छी तरह से पालन करेंगे, आप अनुभव करेंगे कि जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। और ये परिवर्तन केवल वो 4-5 दिन के लिए नहीं होगा, लेकिन आजीवन संगम युगी ब्राह्मण जीवन में वो परिवर्तन आएगा। क्योंकि बाबा ने हमें लक्ष्य तो बहुत ऊंचा दिया है। कोई भी यहाँ आते हैं तो सेंटर पर भी आते हैं तो पहला प्रश्न यही पूछते हैं, इस संस्था का लक्ष्य क्या है, इस संस्था का लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य में तो बहुत बातें सुना सकते हैं, लेकिन जो मूल रूप से हम लक्ष्य बताते हैं वो सिंपल साधारण शब्दों में जो लक्ष्य बताते हैं वो तो वावन भी मूल्यों में कहते हैं कि उनको बताओ कि यहाँ हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। ये सबसे सिंपल आंसर है, मनुष्य से देवता बनना, क्योंकि वो लक्ष्य है। और हमको घर भी जाना है और नई दुनिया में भी आना है, तो रिटर्न जर्नी भी है हमारी। तो जहाँ से आए हैं वहाँ हमें जाना है, परम धाम से आए हैं परम धाम जाना है। तो जिस शुद्ध स्वरूप में आए थे उसी शुद्ध स्वरूप में वापस जाना है, और जो अशुद्धि है वो योग बल से सब खत्म करके शुद्ध पवित्र होकर जाना है। तो ये हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है और उद्देश्य है कि मनुष्य से देवता बनना है, क्योंकि फिर नई दुनिया में आना है। गीत भी एक गाते हैं ना, कहाँ तेरी मंजिल कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। आज भी बाबा ने मुरली में पहले पहले महावाक्यों में कहा कि तुम्हारी मंजिल कौन सी है, राह कौन सी है, जाना कहाँ है, हे राही जाना कहाँ है। तो कहाँ है तुम्हारी मंजिल, कौन सा है तुम्हारा ठिकाना, तो मनुष्य को तो पता ही नहीं है, इसीलिए भटकते रहते हैं। ये जरूर कहते हैं, हे भगवान बस हमें मोक्ष दो, मुक्ति दो, हे भगवान सुख दो, शांति दो, शक्ति दो, केवल मांगते रहते हैं। लेकिन ये उनको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कब समय था जब इस सृष्टि पर ये सब कुछ था, लेकिन कैसे हमने गंवाया और फिर कैसे वापस लेना है ये उनको पता नहीं है। क्योंकि गंवाया कैसे ये मालूम पड़ेगा तो फिर प्राप्त कर कैसे वापस करना है ये भी पता पड़ जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने आकर के हमें सबसे बड़ा क्या किया है, तीसरा नेत्र दे दिया है, जिस तीसरे नेत्र से हमको त्रिकालदर्शी बना दिया। तीसरे नेत्र से हम भूत वर्तमान भविष्य तीनों देख सकते हैं, जिस तीसरे नेत्र से हम तीनों लोकों को देख सकते हैं और तीनों लोकों के मालिक बन जाते हैं, जिस तीसरे नेत्र से हमें सब कुछ ऐसे स्पष्ट दिखाई देता है जैसे वर्तमान में हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हम कैसे नीचे गिरे कैसे फिर ऊपर चढ़ना है, ये सब ज्ञान के तीसरे नेत्र से हमें पता चल जाता है, है ना। तो पहले पहले तो बाबा हमें क्या बनाते हैं, हम क्या थे, बाबा का ज्ञान प्राप्त करने से पहले हम क्या थे, यही कहेंगे ना, शूद्र थे। शूद्र कहना अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि सचमुच थे, सचमुच शूद्रपना ही था, क्योंकि देह अभिमान में थे, है ना। वो कहानी सुनाते ना अष्टावक्र की, अष्टावक्र अष्टवक्र थे, उनके शरीर में बड़ा कुरूप लग रहा था। तो बड़े बड़े विद्वान बैठे थे उस सभा में और वो राजा जनक के पास जाना जा रहा था, तो जैसे सभा में आया वो सारे विद्वान हंसने लगे, सारे हंसने लगे, उनका कुरूप वो चेहरा देख के या शरीर देखकर, आठ कुब थे उनके शरीर में, बड़ा बेढंगा था। तो जैसे ही उन्होंने उसको देखा तो वो तो हंसने लगे, तो उसने क्या कहा राजा को, राजन ये सब चमार बैठे हैं, कहाँ वो पंडित थे विद्वान थे। और राजा जनक ने एक प्रश्न किया था कि हमको सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देगा, तो बड़े लंबे लंबे भाषण उन्होंने किए, तो राजा जनक प्रसन्न नहीं हुआ, उसने कहा एक सेकंड में जीवन मुक्ति हमको कैसे मिल सकती है, तो कोई भी नहीं दे सका। और अष्टावक्र आया। अष्टावक्र जैसे ही सभा में प्रवेश हुआ, सब विद्वान हंसने लगे। तो बहुत ही क्रोध तो क्या कहेंगे, लेकिन बड़े हिम्मत से उसने कहा, ये सब चमार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी चमड़ी को देख रहे हैं, बुद्धि को नहीं देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं। तो हम सब भी क्या थे, खाली वो जो चमड़ी का काम करता है वो ही चमार नहीं है, लेकिन ये शरीर भी क्या है, चमड़ी है ना। तो ये चमड़ी है, तो ये इसीलिए कहते हैं ना, मंदिर में जाते जूते बाहर उतारने, क्योंकि चमड़ी है। चमड़ी की कोई चीज मंदिर में नहीं ले जा सकते, क्योंकि देवताएं तो देही अभिमानी है। तो हम सब देह अभिमानी थे, देह अभिमानी कोई फिर बाबा शूद्र कहते हैं। शूद्र केवल वो नहीं जो लेट्रिन बाथरूम साफ करते हैं, लेकिन हम सब क्षुद्र थे। क्षुद्र माना नीचे गिरे हुए, क्योंकि विकारों के वश थे। और जैसे हमें पता चला कि हम तो आत्मा है, तो ये शूद्रपना हमारा धीरे धीरे खत्म होता गया, क्योंकि आत्मा के ज्ञान ने सबसे पहला परिवर्तन लाया, है ना। परिवर्तन का पहला कदम है आत्मा का ज्ञान, फिर दूसरा कदम है परमात्मा का ज्ञान। तो जब आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ कि हम किसके बच्चे हैं, हम कौन, हमारा कौन, ये जैसे ही पता चला तो आत्मा में वो नशा आ गया। हमारी दादी जानकी यही सबसे पहले कहती थी, 3 बार ओम शांति कह करके क्या कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो मैं कौन और मेरा कौन, क्योंकि सारा खेल इस मैं और मेरे में ही है। सारा दिन सुबह से लेकर के रात तक हम मैं करते रहते हैं। और भगवान ने कहा इस मैं को ही मारो, तो मैं को मारना तो बड़ा मुश्किल लगा, तो जो निर्दोष बकरा है उसको ही काट लेते हैं ना, निर्दोष बकरा, उसकी भी भाषा मैं ही है। लेकिन वो तो बेचारे अनजाने में करता, वो तो उसकी भाषा है, लेकिन हम तो समझ करके भी मैं करते हैं, वही बकरे की भाषा बोलते हैं। तो इसीलिए बाबा ने आकर के सबसे पहले क्या किया, इस मैंपन को खत्म किया, ये अभिमान का जो सिर है उसको ही बाबा ने काट दिया। और बाबा ने क्या युक्ति दी, जब जब मैं कहो तो उस समय क्या कहो, क्या कहो, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। और जब मेरा 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 कहो तो मेरा कौन, एक बाबा बस। तो मैं और मेरा के जो बहुत सारी रस्सियां हैं वो सब कट जाएगी, जब मैं आत्मा और मेरा बाबा ये हम पक्का कर लेंगे, और उसके आधार से हम शूद्र से ब्राह्मण बन जाते हैं। ब्राह्मणों की कई धारणाएं हैं, वो धारणाएं भी हमारे लिए बहुत सहज तब होती है जब मैं और मेरा को अच्छी तरह समझते हैं। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए जो श्रीमत के खिलाफ हो। मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, तो सारा संसार मेरा परिवार है। मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो मेरे द्वारा जो कर्म हो वो सब सुखदायी कर्म हो। तो एक जीवन का पूरा परिवर्तन हो जाता है मैं और मेरे के सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने से, और हम ब्राह्मण बन जाते हैं, है ना। ब्राह्मणों की कई निशानियां बताते हैं भक्ति मार्ग में भी। ब्रह्मा के नाम से कई शब्द है, वो सब ब्राह्मणों से ही लगते हैं। ब्रह्मा के नाम से कौन से शब्द है, ब्रह्मा के नाम से ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्मा मुहूर्त। पर ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला जिसको बाबा कहते हैं, जब भोगी सोते हैं तब योगी जागते हैं, तो वो ब्रह्म मुहूर्त ये ब्राह्मणों की निशानी है और वो भोगियों के सोने का समय, ब्राह्मणों के योगियों के जागने का समय। तो ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्मा से कौन से शब्द जुड़ते हैं, ब्रह्म ज्ञान है वास्तव में शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान ब्रह्मा के मुख द्वारा, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया ब्रह्मा द्वारा वो ब्रह्म ज्ञान हो गया। फिर तीसरा ब्रह्मा से क्या शब्द जुड़ा हुआ है, हाँ ब्रह्मा भोज, ब्रह्मा भोजन। तो जो भोजन ब्रह्मा बाबा खाते थे, जो ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं उनका भोजन होना चाहिए, तो हम वही ब्राह्मण सो देवता बनने वाले, तो इसलिए हमारा भोजन भी शुद्ध शाकाहारी भोजन, परमात्मा की याद में पकाया हुआ भोग लगाया हुआ वो भोजन स्वीकार करें। तो ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भोज और फिर चौथा आता है जी ब्रह्मास्त्र, वो तो विनाश की बात है ना। चौथा है शब्द है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जो हमारी धारणा है। तो ब्रह्मचर्य में फिर बाबा बहुत गहराई बताते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल वो नहीं है कि पवित्र रहना है, काम विकार को जीतना है, लेकिन ब्रह्मचर्य की बाबा इतनी बड़ी परिभाषा देते हैं कि संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी कुछ ऐसा अशुद्ध विचार ना आए, स्वप्न में भी। स्वप्न तो हमारे वश में नहीं है ना, लेकिन स्वप्न में भी ना आए, क्योंकि स्वप्न में अगर आता है तो जरूर संस्कार वही है, क्योंकि संस्कार ही वो स्वप्न में भी आते हैं। तो कर्म में तो कोई विकार न हो, वचन में भी न हो, मेरे मुख से कोई ऐसा शब्द न निकले जो किसी को दुख पहुंचे, क्योंकि वो भी हिंसा है। किसी का व्यर्थ संकल्प चलवाना ये भी बाबा कहते हैं पवित्रता नहीं है। मेरे ऐसे शब्द निकले जिससे किसका व्यर्थ संकल्प चले तो बाबा कहते हैं ये भी अपवित्रता है। मेरा तो चले ही नहीं, परंतु मैं निमित्त भी न बनूं दूसरे के व्यर्थ संकल्प चलाने के, क्योंकि कैसे व्यर्थ संकल्प हम दूसरों के चलवाते हैं जब कोई गलत शब्द बोल लेते हैं। फिर उसके मन में आता ऐसे क्यों कहा, क्या मतलब है इसका, इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए, है ना। दुनिया में जो आधे झगड़े होते ना, पारिवारिक झगड़े जो भी होते, आधे झगड़े उनके जो होते हैं वो हमारे बोल के कारण होते, हमारे बोल के कारण। तो बाबा ने एक बाबा की परसों की भी मुरली थी, अव्यक्त मुरली, पहले तोलो फिर बोलो। पहले तोलो, कोई भी शब्द बोलना है तो पहले सोचो इस शब्द का क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर बोलो। और जो सारे दिन में बातें हुई, जो कुछ हुआ, रात को बाबा को दे दो और निश्चिंत होकर बाबा की गोद में सो जाओ। इसीलिए ये भी कहावत है, रात गई बात गई, हाँ रात गई बात गई, पूरा हुआ। कैरी फॉरवर्ड नहीं करो दूसरे दिन के लिए, उसी दिन का हिसाब किताब उसी दिन ही पूरा कर दो। बाबा को दे करके इतनी अच्छी नींद आप कर सकेंगे बाबा की गोद में। परंतु अगर कुछ ऐसे व्यर्थ सोच करके सोते हैं तो नींद तो पहले आएगी नहीं, चलो आ भी गई लेकिन वही सोच स्वप्न में भी आएगा और वही सोच सवेरे उठकर भी आएगा। इसलिए सवेरे तो रात को तो एकदम खाली होकर के सोना है बस, तब अमृत वेला भी हमारा सही होगा। आपका एक टॉपिक है इसमें, हमारी दिनचर्या जो है वो हमारी, उसी के आधार से हमारा योग भी लगेगा, कैसी हमारी दिनचर्या है, तो वो भी एक टॉपिक है आपका। तो इसीलिए तो ब्रह्मचर्य को बाबा इतना ऊंचा लेते, मन वचन कर्म तीनों से ही वो पवित्रता हो। असाकार मुरलियों में तो कई बार आता है कि बच्चे अगर मन में आता है कोई बात नहीं, वचन में आता है तो भी कोई बात नहीं, पर कर्म में नहीं आना चाहिए, बाबा कहते कर्म में। लेकिन अव्यक्त मूल्यों में तो बाबा इतना सावधान करते हैं, मन में भी नहीं आना चाहिए। अगर मन में भी कुछ ऐसा अशुद्ध सोच आता भी है, ये भी ब्रह्मचर्य का उल्लंघन है, ये भी पवित्रता का उल्लंघन है। इसीलिए आपका कल का पहला टॉपिक ही है पवित्रता, प्यूरिटी की पर्सनालिटी। तो ये सारी बातें आपकी भट्ठी में चलेगी, जिससे हम डबल लाइट बन सकेंगे, क्योंकि तभी तो फरिश्ता बनेंगे। ब्राह्मण से फिर फरिश्ता बनना है, पर ब्राह्मण और फरिश्ता के बीच में ब्रह्मा बाबा को बीच में लाते हैं। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता कैसे बना? शिव बाबा ने प्रवेश किया, ब्रह्मा नाम दिया तो ब्राह्मण तो बन गया। फिर उनके मुख से शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया और उस ज्ञान को जिन्होंने सुना वो ब्राह्मण तो कहलाए। लेकिन फिर ब्राह्मण से फरिश्ता कैसे बनना है? तो ब्रह्मा बाबा कैसे फरिश्ता बने? ब्रह्मा बाबा ने कितना ऊंचा लक्ष्य रखा, मैं जो कर्म करूंगा मुझे देख और करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। हम बेहद के ड्रामा स्टेज पर खड़े हैं, हम पूर्वज हैं, हम पूज्य हैं, हम इस कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। ये बाबा ने नशा चढ़ाया और उसके आधार से बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हमें, तीन तख्त दिए, एक तो भ्रकुटी का तख्त, फिर बाबा का दिल तख्त और फिर भविष्य का राज्य तख्त। लेकिन भ्रकुटी का तख्त तो सबके पास है, परंतु बाबा का दिल तख्त जीतने के लिए बाबा हमें जो श्रीमत देते हैं, हर मुरली में बाबा की श्रीमत जो मिलती है, बच्चे ये करो बच्चे ये नहीं करो, श्रीमत है वो, तो उस अनुसार ब्रह्मा बाबा चले तो हमको भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। परसों भी बाबा ने यही कहा ना, जो कर्म ब्रह्मा बाबा नहीं करेंगे हमको भी नहीं करना है। कोई भी कर्म, कोई भी वचन, कोई भी सोच विचार करने से पहले ये सोचो ब्रह्मा बाबा ऐसे करता? अगर ब्रह्मा बाबा इस समय होता तो ब्रह्मा बाबा ऐसे करता? ब्रह्मा बाबा ऐसे बोलता? ब्रह्मा बाबा ऐसे सोचता? तो ब्रह्मा बाबा नहीं ऐसे सोचेंगे, ब्रह्मा बाबा ऐसे कर्म नहीं करेंगे, ब्रह्मा बाबा ऐसे नहीं कहेंगे, मुझे भी नहीं कहना, क्योंकि मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है। तभी बाबा ने कहा ना फॉलो फादर। फॉलो फादर का मतलब क्या है? कैसे नहीं, उसके कदम पर ऐसे कदम रखना। फॉलो फादर माना जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो मुझे भी करना है। तो ये ब्रह्मा बाप के समान बनना है। तभी तो बाबा कहते हैं ना, तुम ब्रह्मा बाबा के साथ में जाओगे। शिव बाबा तो हो गए, लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ जाना है, फिर ब्रह्मा बाबा की आत्मा के साथ नई दुनिया में आना है, तो ब्रह्मा बाप समान बनना पड़ेगा और उसके लिए डबल लाइट बनना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा कितने लाइट रहते थे, भले कई बार बाबा कहते हैं साकार मूल्यों में, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, है ना, सिंधी में कहावत है, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ जो होता है ना वो थैली में होता है, अब वो कितना मीठा है वो उसकी थैली को पता है, क्योंकि थैली में लगता है ना गुड़, वो गुड़ थैली में भी लगता है, तो वो थैली भी तो उसी अनुसार मीठी हो जाती है ना, मिठास आता है, तो गुड़ कितना मीठा है वो उसकी थैली को भी थैली को ही पता है। तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, माना इतने बाबा की जिम्मेदारियां थी, इतने बाबा के बच्चे थे, इतने बाबा के सेंटर्स थे, तो बाबा को तो कितनी चिंता होगी, लेकिन बाबा बिल्कुल हल्के थे, हल्के न्यारे प्यारे बाबा रहते थे। कोई ऐसे सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी संस्था चलाते। हमारी दादी प्रकाशमणि को भी देखा, कैसे एक सेकंड में दादी बिस्तर पर गई, बाबा की याद में सो गई। हाँ, कैसे नींद आ जाती थी। दादी से कई बार पूछते थे कि दादी जी आपको रात को नींद आती है? इतनी सारी सेवा केंद्र, इतनी सारी बहने, इतनी समर्पित बहने, इतना कारोबार, तो क्या आपको नींद आती है? तो दादी कहती थी, क्यों नहीं आएगी नींद, मैं थोड़ी कुछ करती हूँ। सीधा दादी कहती, मैं तो कुछ भी नहीं करती, सब बाबा करण करावन हार बैठा है, भले निमित्त बनाया लेकिन वो तो वही करता है, वही करा रहा है। तो इतनी हल्की रहती, तो ब्रह्मा बाबा भी हल्के रहते थे। कई बार बाबा की मुरली में आता है कि ये इंजन को सारे तूफान लगते हैं, लेकिन क्या आप समझते हो कि ब्रह्मा बाबा को तूफान आते होंगे? आते होंगे जैसे हम लोगों को आ सकते हैं? नहीं। परंतु बच्चों के खातिर बाबा ये जरूर कहते थे, ताकि बच्चे हार्ट फेल ना हो जाए। हार्ट फेल बाबा कहते थे, वो ये हताश न हो जाए, निराश न हो जाए कि हम तो पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते। हाँ, कई बुजुर्ग बाबा के सामने आते थे और बाबा को कहते थे, बाबा अभी तो हम बूढ़े हो गए, अभी तो कहाँ पुरुषार्थ हो पाता है, जवान होते तो कुछ करते। तो बाबा कहते थे, ये बूढ़ा कर सकता है, तुम नहीं कर सकते। हाँ, 93 वर्ष की उम्र थी बाबा की। तो ये बूढ़े ने अंत तक सेवा की, अंत तक सेवा की, रात्रि को भी क्लास करा के वापस कमरे में आए, तो अंत तक सेवा की। तो ये बूढ़ा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो बूढ़ों को भी नशा चढ़ता था, हमको ब्रह्मा बाप समान बनना है। कई जवान आते थे, बाबा को कहते थे, बाबा अभी तो हम जवान है, अभी तो दुनिया देखी नहीं है, जवानी में अभी तो जवान है, दुनिया देख लो, थोड़ा टेस्ट कर लो संसार का। तो बाबा कहते थे, मामा को देखो, मामा कितनी जवान, 17 साल की थी। और बाबा ने उनको उस दिन का, आप डिसाइड करो क्या करना है, कल सुबह सुबह तक जवाब देना है। और सचमुच अगले दिन से धक से सब कुछ छोड़ा। तो कन्याएं, कुमार, जवान, तो बाबा उनको कहते, तो मामा को देखो, मामा ने क्या किया, माँ कैसे बनी, एक कुमारी 17 साल की कुमारी, परंतु वो माँ बन गई, वो संस्कार माँ के उनके अंदर आए। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। बाबा कई बार, मुझे याद आता है, हम लोग जब ट्रेनिंग में आए थे, कुमारियों की ट्रेनिंग थी, बाबा अव्यक्त हुए 69 में, उसके बाद बाबा ने कहा कि अभी यहाँ ट्रेनिंग रखो, कुमारियों की भट्ठी रखो, माताओं की मधुबन में। तो उस ट्रेनिंग में हम भी आए थे, पहली ट्रेनिंग 69 में। तो उस समय बाबा ने हम कुमारियों को बहुत सुंदर बात कही। बाबा ने कहा, कभी भी अपने को कुमारी नहीं समझना, क्योंकि कुमारी कहीं सोचेगी ना तो कुमारी माना कोमल कोमल। हाँ, अब कुछ भी अनुभव नहीं, कुछ नहीं, कुमारी नहीं समझना, लेकिन क्या समझना, मैं जगत माता हूँ। क्या समझना, जगत माता हूँ। तो जगत माता हूँ, तो जगत माता तो शक्ति होगी ना, और कुमारी कुमारी कहेंगे तो क्या होता है, कोमल हो जाएंगे। फिर उसके बाद माताओं की भट्ठी हुई, तो बाबा ने उनको फिर क्या कहा, कभी भी अपने को माता नहीं समझना, कुमारियों को कहा जगत माता समझना, और माताओं को बाबा ने कहा, तुम माता नहीं हो, तुम ब्रह्मा कुमारी हो। तो माताओं को क्या बना दिया, ब्रह्मा कुमारी, और कुमारियों को क्या बना दिया, जगत माता। क्योंकि माता सोच, मुझे मेरे तो बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरी गृहस्थी है, मेरा फलाना है, तो वो माताओं माताओं ऐसे समझते हैं, पर नहीं, ब्रह्मा कुमारी हूँ। हमारी दादी मनोहर दादी थी, मनोहर दादी हरियाणा में बहुत रही है, तो मनोहर दादी की विशेषता थी, 80 साल की हो गई थी, लेकिन जब भी दादी को कहते थे ना, हाँ दादी, ये कहती क्यों नहीं, मैं तो कुमारी हूँ ना, 80 साल की हो गई लेकिन मैं तो कुमारी हूँ ना। दादी प्रकाशमणि भी 85 साल की उम्र में शरीर छोड़ा, और बाबा की जब मुरली आती थी ना, मुरली में आता था बूढ़िया बूढ़िया, तो दादी कहती थी, पूछती थी, कौन है जो 80 साल से ऊपर है, तो उठाते थे हाथ, पर ये भूल जाती थी मैं भी तो 80 साल से ऊपर हूँ। लेकिन दादी को क्या नशा था, क्योंकि कुमारी थी, जीव कुमारी का ही जीवन था, लेकिन जगत माता थी। तो कैसे बाबा ने सबको परिवर्तन किया, तो कोई बहाना दे ही नहीं सकता कि कैसे करे। दोनों एग्जाम्पल हमारे पास है, जवान का भी एग्जाम्पल है और बूढ़े का भी एग्जाम्पल है, सब है बाबा के सामने। लेकिन बाबा भी कभी नहीं कहते थे मैं तो बूढ़ा हूँ। हाँ, बाबा कहते थे जरूर, बूढ़ों को देखते थे बाबा को खुशी होती थी, बाबा कहते आप हम जिन्स हो हमारे, हम जिन्स हो, तो इसीलिए उसको वो खुशी भी होती थी। लेकिन बाबा कितने न्यारे प्यारे सरल, सब कुछ इतना लगता ही नहीं था, बाबा चल रहे हैं जैसे फरिश्ता चल रहे। मम्मा भी जब चलती थी लगता ही पता ही नहीं चलता था, कई लोग होते ना ठप 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 अपने चप्पल की इतनी जोर जोर से आवाज करते हैं, पता चल जाता है कि वो आ रहा है। तो मम्मा कई बार कहती थी ये धरती को भी दुख मत दो, जोर जोर से चप्पल की आवाज करते ना, जूते की आवाज करते, ये भी तो जैसे धरती को दुख मिलना है, तो और तो किसको नहीं देना है, पर धरती को भी नहीं देना। जोर जोर से हंसना वो भी मम्मा का कभी नहीं देखा। देवताओं की मुस्कुराहट ही जैसे हमेशा रहती थी। तो देवता बनने से पहले तो हम ब्राह्मण बनते हैं, पर ब्राह्मण बनना माना ये चार जो ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं उसका भी पालन करना। फिर और भी मर्यादाएं हैं, ब्राह्मण किसको कहा जाता है, जो पढ़े और पढ़ाए, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। बाबा हर मुरली में हमेशा कहते हैं बच्चे पढ़ाई पढ़ाई करनी भी है और पढ़ाना भी है। ब्राह्मणों के कच्छ में कुरम दिखाते, किताब हमेशा उनके ये कच्छ में रहता है, जैसे बाहों में हमेशा किताब होना चाहिए, शास्त्र कुछ न कुछ होना चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, ब्राह्मण माना ब्रह्मचर्य लाइफ में पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है। फिर ब्राह्मण माना जो यज्ञ करे और कराए, यज्ञ करे और कराए माना स्वाहा स्वाहा स्वाहा, खुद भी करे अपने कमियों को स्वाहा, तो दूसरों से भी करवाए। इसलिए राखी बांधते हैं तो क्या कहते हैं, अब प्रतिज्ञा करो, तो खुद भी करते हैं और दूसरों को भी करवाते। तो ब्राह्मणों की विशेषता तो बहुत है। फिर ब्राह्मण बनने के बाद फरिश्ता जब तक बने तब तक हमें पहले डबल लाइट बनना है। तो डबल लाइट माना वो व्यर्थपना सब खत्म है ना। मिसाल देते हैं, हम आसाम गए थे तो आसाम में वो रिफाइनरीज है, तेल तेल जो धरती से निकलता है उसको शुद्ध करते हैं, तो शुद्ध करने के लिए कई प्रोसेसेस है, ऐसे ही नहीं कोई शुद्ध तेल निकलता है, बहुत काला 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 तेल निकलता है, एकदम काला वो जो तेल निकलता है, तो वो जो तेल निकलता है उसको कैसे शुद्ध करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग होती है। परंतु जो जो चीज़ें निकलती जाती है ना उसको यूज़ भी करते हैं, ऐसे नहीं कि यूज़ नहीं करते। तो हमने देखा, आपको बताया, सबसे पहले जो निकलता है जो काले तेल से वो डामर निकलता है, डामर कितना काला होता है, डामर वो रोड बनाने के लिए डामर यूज़ होता है। फिर दूसरा निकलता है चिकना चिकना निकलता है, तो जो चिकना चिकना निकलता उसे वैक्स बनाते, वैक्स है ना, मोम, मोम की फिर मोमबत्तियां बनाते, तो ऐसे कितनी चीजें निकालते हैं 14 या 16, और फिर जाकर के इतना शुद्ध वो फ्यूल बनता है जो एविएशन फ्यूल यानी हवाई जहाज के लिए तेल, क्योंकि डीजल पेट्रोल तो वो तो फिर भी थोड़ा भारी होता है, पर हवाई जहाज में तो कितने लीटर पेट्रोल होता है, पर तो अगर वो भारी हो तो हवाई जहाज के लिए तो डर है ना, तो वो पेट्रोल इतना हल्का होता है क्योंकि सब कचरा निकल गया, सब कचरा निकल गया, एकदम पानी से भी हल्का, पानी भी थोड़ा भारी है, उस पानी से भी हल्का होता है वो जो हवाई जहाज में पेट्रोल भरते हैं, तो आप सोचो कितना उसका कचरा निकला होगा, निकला होगा। अभी आत्मा भी कितनी भारी हो गई है, अब उसमें से कचरा निकालना है ना, अब कचरा निकालना, अंदर तो देवता है, देवता है अंदर, खाली वो बाहर की परतें जो है ना वो निकालनी है, होता है ना, जैसे कोई मूर्तिकार होता है उसको एक पत्थर मिलता है, तो मूर्तिकार को पत्थर जो मिलता है उस पत्थर को के लिए कहते हैं कि उस पत्थर से अभी मूर्ति बनानी है, तो कोई सोचे कि इसमें इससे मूर्ति कैसे बनेगी, कैसा बेढंगा पत्थर है, लेकिन जो मूर्तिकार होता है ना उस बेढंगे पत्थर में मूर्ति देखता है, पहले से ही उसको मूर्ति दिखाई देती है कि ये कैसे मूर्ति बनेगी। तो कोई मूर्ति बनाने के लिए कुछ जोड़ता नहीं है, लेकिन क्या करता है, हाँ जोड़ता नहीं है, हाँ जोड़ता नहीं है लेकिन निकालता है, तो जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें हैं वो उसमें से निकालता है, निकालता जाता है, हथौड़ी और छेनी से निकालता जाता है, निकालता जाता है, और वो सब अलग हो जाता है किचरा, और अंदर से देखो कितनी सुंदर मूर्ति बन जाती है। तो बाबा भी हम बच्चों को ऐसे ही मूर्ति बनाते हैं, बाबा की मुरलियाँ हमको शुद्ध बनाती जाती है, बाबा की जो भी श्रीमत मिलती है वो हमको शुद्ध बनाती जाती है, और सचमुच जो भी श्रीमत बाबा की मिलती है ये समय की मांग है, शुद्ध अन्न खाना ये समय की मांग है, श्रेष्ठ संग में रहना ये समय की मांग है, तो जो भी बाबा की श्रीमत है ये बहुत प्रासंगिक है, इस समय अनुसार है, और जो नहीं चलते श्रीमत पर फिर वो पछताते हैं, और अगर श्रीमत पर चलते हैं तो हमें कोई प्रकार का पश्चाताप करने की जरूरत ही नहीं है। और बाबा कहते हैं अंत में शुद्ध होकर पावन होकर वापस घर जाएंगे, तब तक तो पुरुषार्थ करना है, जाना तो बाबा के साथ ही है ना, शुरू शुरू में जब यज्ञ की शुरुआत हुई थी तो बाबा यही कहते थे, बच्चे हम अभी सब साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ जाएंगे, साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ जाएंगे। तो सबने क्या सोच लिया उस समय कि कोई भी शरीर नहीं छोड़ेगा क्योंकि साथ जाएंगे साथ रहेंगे माना शरीर कोई नहीं छोड़ेगा ना, सब यहीं रहेंगे। लेकिन फिर देखो कैसे धीरे धीरे शरीर छोड़ते गए, और सबसे बड़ी बात तो जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, माँ बाप तो मम्मा ने शरीर छोड़ा, अब मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो सबके संकल्प चले, मम्मा चली गई, मम्मा चली गई, तब उसके बाद ये राज खुला, संदेशियों ने राज बताया कि मम्मा चली नहीं गई है लेकिन मम्मा एडवांस पार्टी की लीडर बनी है। फिर एडवांस पार्टी क्या होती है वो बाबा ने राज खोला, जो सतयुगी दुनिया की नई रचना रचेंगे वो एडवांस पार्टी। तो देखो नई नए राज खुले, फिर ब्रह्मा बाबा अभ्यक्त हुए तो और नए राज खुले, कि अभी तक जो सेवा हुई वो तो चीटी मार्ग की सेवा हुई और अभी विहंग मार्ग की सेवा होगी, तो नए नए राज बाबा ने खोले, तो देखो अभी बाबा की सेवा कैसे चल रही है। कई कहते हैं दादियां चली गई, बाबा कहते नहीं, पतन से सकाश सब दे रहे हैं, कोई चला नहीं गया है, वो सब एडवांस में बाबा तैयारी करवा रहा है ताकि हम तैयार हो जाएं तो हम सब साथ में घर चलेंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ जरूर चलेंगे। तो इसीलिए ये कोई नहीं सोचे अरे बाबा चला गया, मम्मा चली गई, दादियां चली गई, कोई नहीं चला गया, सब साथ है और साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, फिर साथ आएंगे। ये निश्चय है ना सबको, सबको निश्चय है ना, या ये सोचते हो दादियां तो चली गई, नहीं बिल्कुल नहीं सोचना। इसलिए देखो दादियों के फोटोज लगाए हैं, सदा ही सोचो दादियां यहाँ हैं। तो इसीलिए बाबा भी साथ है, मम्मा भी साथ है, दादियां भी साथ है और हम सब बच्चे भी साथ है और साथ चलेंगे और साथ में घर जाएंगे, साथ में नई दुनिया में आएंगे। तो क्या बनना है, रॉयल फैमिली बननी है ना, रॉयल फैमिली, कम से कम 16108 की रॉयल फैमिली तो चाहिए, भले राजा रानी तो एक बनेंगे लेकिन हम सब उसी घराने के हैं, हम वही देवता बन रहे हैं। पर देवता बनने के पहले डबल लाइट, फरिश्ता, फर्श के रिश्तों से परे, उसके लिए बाबा हमें तैयार करते, शरीर में आओ, शरीर से न्यारे हो जाओ, शरीर में आओ, सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ, लाइट का शरीर धारण करो, शरीर में आओ फिर एकदम अशरीरी हो जाओ। ये प्रैक्टिस करने से डबल लाइट होते हैं। तो आपके क्लासेस में कई बातें आप सुनेंगे और अनुभव करेंगे। अभी तो हम यही समाप्त करते हैं, अभी इसके बाद आ गई सतीश भाई, अभी हम यही समाप्त करते हैं और तो लक्ष्य भी मिला और साथ साथ उद्देश्य भी मिला कि क्या हमें करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिलो दीदी जी का। हम लक्ष्य और उद्देश्य के साथ साथ हमें गहराई में ले गए और मम्मा बाबा को याद दिलाया कि मम्मा बाबा ने कैसे यज्ञ को संवारा। तो ये बातें जो होती है ना, उसमें हम खो जाते हैं। जब खो जाते हैं तो हमारा योग भी बाबा से बहुत अच्छी तरह से लग जाता है। फिर से हम एक हाथ की थाली से दीदी का धन्यवाद करेंगे। अच्छा जी, और अभी हम स्वागत गीत में इनवाइट कर रहे हैं मधुर वाणी ग्रुप, हमारे ब्रह्मा कुमार, सतीश भाई जी, हलधर भाई जी और निरंजन भाई जी को। आइए और सभी को ऐसे बहलाइए कि उड़ जाए। कहाँ उड़ जाना है? ऊपर उड़ जाना है। हम कितने भाग्यवान है कि देखो मधुबन निवासी हमारा स्वागत कर रहे, नशा, नशे के साथ की सुनना और साथ में जुमना भी।
ओम शांति। सब खुश हैं? जो खुश है हाथ उठाए। वाह वाह वाह। मधुबन मोन भट्ठ में आकर खुश है मनवा मोरा। आप सबको देख करके मधुबन निवासी भी खुश होते हैं। मधुबन मोन भट्ठी में आकर खुश है मनवा मोरा। शुक्रिया धन्यवाद बाबा दिल से लाखों तेरा। है शाहबाद मारकंडा आया आया धर्मशाला। जोरदार तालियां हो जाए।
शाहबाद में नूतन बहन शाहों का शाह बना रही और कमलेश दीदी पहाड़ों में जीवन कमल है खिला रहे, एक बार जोरदार तालियां कर रहे। और दीदियों संग अरुणा दीदी का तो रंग बिखरने वाला है और चेतन दिलवाड़ा में करता स्वागत वो दिलवाला है, स्वागत वो दिलवाला, बहुत बहुत स्वागत।
शाहबाद मरकंडाया आया धर्मशाला है, आए तपोभूमि में तप करने हो नर जग में उजाला है, दिल से स्वागत करता आपका वो प्यारा दिल वाला है, चेतन दिल वाला मैं करता स्वागत वो दिल वाला है। मधुबन में भट्टी का अवसर भाग्यवान ही पाता है, चारों धाम पर आकर मन बेहद खुश हो जाता है। मधुबन में भट्टी का अवसर भाग्यवान ही पाता है, चारों धाम पर आकर मन बेहद खुश हो जाता है। वाहर बाबा वाह वाह का गीत निराला है, दिल से स्वागत करता आपका वो प्यारा दिल वाला है, चेतन दिल वाला मैं करता स्वागत वो दिल वाला है। मन का मुख का मोबाइल का मौन ध्यान में रखना, करें तपस्या मम्मा जैसी बाबा से बातें करना। मन का मुख का मोबाइल का मौन ध्यान में रखना, करे तपस्या मम्मा जैसी बाबा से बातें करना। भोलानाथ हर हाल में झोली भरने वाला है, दिल से स्वागत करता आपका वो प्यारा दिल वाला है, चेतन दिल वाला मैं करता स्वागत वो दिल वाला है। शाहबाद में नूतन बहन शाहों का शाह बना रही, कमलेश बहन पहाड़ों में जीवन कमल खिला रही। शाहबाद में नूतन बहन शाहों का शाह बना रही, कमलेश बहन पहाड़ों में जीवन कमल खिला रही। दीदियों संग अरुणा दीदी का रंग बिखराना है, दिल से स्वागत करता आपका वो प्यारा दिल वाला है, चेतन दिल वाला मैं करता स्वागत वो दिल वाला है, स्वागत वो दिल वाला है, स्वागत वो दिल वाला है, स्वागत वो दिल वाला है।